आपको अल्लाह पाक की कस्में और रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। आपने उसकी एक बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि वो लोग पूरे के पूरे जमीन में धस गए। हजरत कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो लोग कयामत तक जमीन के अंदर धसते ही चले जाएंगे। ये अल्लाह का अजाब है जो इन्हें इनकी दुश्मनी की वजह से मिलता रहा। बचपन में एक वाक्य सुना था, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। किसी मार्केट में एक शख्स की शॉप होती है, शायद कपड़े वगैरह का काम था उसका। वो छुट्टी वाले दिन अपने घर में होता है, तो अचानक उसे एक कॉल आती है और पता चलता है कि जिस मार्केट में उसकी शॉप थी उसमें आग लग गई है मार्केट में। न्यूज़ बहुत शॉकिंग थी, पर उसे शॉक नहीं लगता। वो उठता है और फौरन मार्केट की तरफ चला जाता है। लेकिन एक होता है ना कि किसी को पता चले कि उसकी दुकान पर आग लग गई है जिसमें लाखों का माल है, तो उसकी हालत ख़राब हो जाए। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो मार्केट पहुंचता है, वहां भी ऐसे ही पुरसकून में ही रहता है। लोग उसे देखकर हैरान होते हैं कि भाई जल्दी जाओ और अपनी दुकान तो चेक करो, पर वो इत्मीनान के साथ रहता है। और जब शॉप के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके आसपास की शॉप्स पर आग लगी हुई है, लेकिन उसकी शॉप बची हुई है। खैर, आग बुझाई जाती है और फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो उसके आसपास दुकान वाले उससे पूछते हैं कि भाई वो तो तुझे यहाँ आके पता चला था कि तेरी दुकान बच गई है, पर तू तो पहले से ही सुकून में था, इसके पीछे क्या रीज़न है? वो बताता है कि मैं हर साल पाबंदी के साथ अपने माल की ज़कात निकालता हूँ, मैंने कभी भी अल्लाह के हक में खयानत नहीं की और मेरा ईमान है कि ज़कात माल की हिफाजत करती है, इसलिए मैं पुरसकून था कि मेरे माल को कुछ नहीं होगा। और देखो अल्लाह ने कैसे मेरे माल की हिफाजत भी फरमाई। इस वाकये से एक बात दिमाग में बैठ गई थी कि सदका और ज़कात वगैरह से माल की हिफाजत होती है। और फिर बाद में जाके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनी तो यकीन और मज़बूत हो गया। इसी बात को हम एक दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि जो ज़कात या ज़रूरी सदकात नहीं देता उसका माल ख़तरे में पड़ जाता है, अल्लाह उसके माल की हिफाजत नहीं फरमाता, बल्कि वही माल उसकी बर्बादी का ज़रिया बन जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक तारीखी दुश्मन के बारे में सुनेंगे जिसे उसके माल की मोहब्बत ने अल्लाह का हक अदा करने से रोका, उसे अल्लाह का दुश्मन बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, उस माल की मोहब्बत और नहुसत ने उससे इतना घटिया काम करवाया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कितना फ़ायदा दिया उसको इसके माल ने, क्या हाल किया अल्लाह ने उसका और उसके माल का, जानेंगे आज की वीडियो में। नाज़रीन, हम जिस दुश्मन की बात कर रहे हैं वो दुश्मन भी पिछली वीडियो की तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है और उसका नाम था कारून। कारून ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। बहुत खूबसूरत था, हसीन शक्ल का आदमी था, इसलिए इसे मुनव्वर कहते थे। और तो और बनी इसराइल में तौरात का सबसे अच्छा कारी भी यही था और बहुत बड़ा आलिम भी, और लोग इसका बहुत अदब किया करते थे। जब ये गरीब था तो बहुत आजी करने वाला बा अखलाक शख्स था, लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था। लेकिन जैसे ही इसके हाथ में माल और दौलत आना शुरू हुई, ये बिल्कुल चेंज हो गया और मुनाफिक बन गया। और ये दौलतमंद इस तरह बना कि फिरौन ने इसे बनी इसराइल का सरबरा यानी लीडर बना दिया था। इस एतबार से ये बनी इसराइली होकर भी जालिम फिरौन का साथी था, क्योंकि फिरौन बनी इसराइल में ऐसे ही आदमी को लगाता था जो हर मामले में इसके साथ वफादार रहे। और फिर देखते ही देखते ये बहुत अमीर हो गया, अल्लाह पाक ने इसे बहुत दौलत दी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इसके खजाने इतने ज़्यादा हो गए कि सिर्फ इनकी चाबियां उठाने के लिए इसे ताकतवर लोगों की पूरी एक टीम बनानी पड़ी, और फिर वो सब मिलकर इसके खजाने की चाबियां उठाते थे। और वो लोग भी इसके खजानों की वजनी और भारी चाबियां उठाकर थक जाया करते थे। जब कारून सवार होकर कहीं जाता तो कई खच्चरों पर इसके खजाने की चाबियां रखी जाती। नाज़रीन तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, इतना अमीर आदमी कि इसके खजाने नहीं बल्कि इसके खजाने की चाबियां एक पूरी ताकतवर टीम उठा रही है। और फिर इसी दौलत ने कानून को इस्लाम का दुश्मन बना दिया, और वो कितना बद अखलाक और मगरूर हो गया इसका अंदाज़ा आप इस वाक्य से लगाइए कि एक मरतबा हफ्ते के दिन कानून बहुत इतराते हुए इस अंदाज से निकला कि उसने अपने ऊपर सोने की जेन डाली हुई थी, सफ़ेद रंग के खच्चर पर बहुत कीमती और शानदार कपड़े पहने हुए थे और इतराते हुए जा रहा था। इसके साथ हजारों खादमाएं और गुलाम भी थे जो कि जेवरों से भरे हुए रेशमी लिबास पहने और सजे हुए घोड़ों पर सवार थे। जब कुछ लोगों ने इसकी इस शाहाना अंदाज और इसकी दौलत को देखा तो उनमें से कुछ लोग जो माल और दौलत को बहुत पसंद करते थे वो कहने लगे, काश हमें भी ऐसी शान और शौकत और माल दौलत मिलती। वाकई में कानून का नसीब हमसे बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों में से कुछ अल्लाह वाले भी थे जो सच्चे मोमिनीन थे। उन्होंने जब कारून को इतराते हुए और अपनी दौलत के नशे में मस्त देखा तो उनसे कहा कि कारून, इतना अकड़ मत, गुरूर अच्छा नहीं है, और अल्लाह का नाशुकरा मत बन वरना अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो जाएगा। ये जो अल्लाह की नेमतें तेरे पास है ना, इन्हें अल्लाह को खुश करने वाले कामों में खर्च कर ताकि आखिरत में तेरा हिस्सा हो जाए। उन्होंने उनसे कहा, अच्छा खा, अच्छा पी, अच्छा पहन, जायज़ नेमतों से फ़ायदा उठा, हलाल चीज़ें और हलाल काम कर, लेकिन जहाँ अपना ख्याल रख वहीं ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रख। जहाँ अपने नफ्स को ना भूल वहाँ अल्लाह के हक को भी ना भूल। जिस तरह तेरे नफ्स का तुझ पर हक है, इसी तरह तेरे मेहमान का भी तुझ पर हक है, तेरे बाल बच्चों का भी तुझ पर हक है, मिस्कीन और गरीब का भी तेरे माल में हिस्सा है। हर हकदार का हक अदा कर, और जैसे अल्लाह ने तेरे साथ सलूक किया है, तेरे साथ मामला किया है, तो औरों के साथ भी सलूक और एहसान कर। अपने इस गलत एटीट्यूड को बदल दे और अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देना बंद कर दे। अल्लाह फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। नाजरीन, आपने सुना ईमान वालों ने कितने प्यारे और खूबसूरत अंदाज में कारून को नसीहत की, लेकिन चूंकि कारून अपनी माल और दौलत के नशे में बिल्कुल अंधा हो गया था, लिहाजा उसे इन अल्लाह वालों का नसीहत करना पसंद नहीं आया। नसीहत कबूल करने के बजाय वो उल्टा उन पर भड़क गया और उन्हें जवाब देते हुए कहा कि तुम किस एहसान की बात करते हो? कौन सा फजल? मुझे तो ये माल मेरे इल्म की वजह से मिला है। मैं इस दौलत को अपने इल्म और स्किल की वजह से डिजर्व करता हूँ, तो अल्लाह ने मुझे ये दिया है। नाज़रीन, कारून ये किस इल्म की बात कर रहा था, इस बारे में किताबों में मुख्तलिफ बातें मिलती हैं। कुछ में यह है कि तौरात की इल्म की बात कर रहा है, एक बात यह भी लिखी गई है कि वह इल्म कीमिया की बात कर रहा है जो कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सीखा था, और इसके जरिए वो एक मेटल ब्रॉन्ज को चांदी और कॉपर को सोना बना लेता था। नाजरीन, कारून का ख्याल था कि चूंकि मेरे पास इल्म है, दौलत है, दबदबा है और लोग बहुत हैं, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और यूं वो तौरात का इल्म होने के बावजूद अल्लाह के अजाब को भूल बैठा। इसके इस ख्याल पर कुरान पाक में फरमाया गया, और क्या इसे ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने इससे पहले वो कौमें हलाक फरमाई जो ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा माल जमा करने वाली थी। नाजरीन, कारून के पास सब कुछ था, माल और दौलत, शान और शौकत, जिंदगी भर की आसाइश इसके पास थी, लेकिन इनसे बढ़कर एक नेमत ऐसी थी जो इसके दोनों कजन्स के पास थी, मगर वो इससे महरूम था। वो अपनी सारी दौलत देकर भी उस चीज़ को नहीं खरीद सकता था, वो चीज़ थी नबूवत। और इसी नेमत की वजह से उसे हजरत मूसा और हजरत हारून अली सलाम से हसद होने लग गया, और फिर एक ऐसा मौका आया कि इसने अपने हसद का इजहार करके अपने इस्लाम दुश्मन होने का पूरा पूरा सबूत दे दिया। वाकया कुछ इस तरह है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जब बनी इसराइल को दरिया पार करवाया तो उसके बाद कुर्बानियों का इंतज़ाम हजरत हारून अला नबी जना वाली सलातम को दिया गया। बनी इसराइल अपनी कुर्बानियां हजरत हारून के पास लाते और वो इन कुर्बानियों को एक ख़ास जगह पर रख देते और वहां आसमान से आग उतर कर उनको चला देती। तो हुआ कुछ यूं कि कारून हजरत हारून की इस डेजिनेशन पर हसद हुआ, यानी वो उनसे जलने लगा, और उसने हजरत मूसा से कहा कि अब तो रसूल बन गए हैं आप, और कुर्बानी की जिम्मेदारी आपने हजरत हारून को दे दी, मुझे आपने बिल्कुल छोटा बना दिया और मुझे कोई ऐसी अहम ड्यूटी नहीं दी, हालांकि मैं तौरात का बेहतरीन कारी हूँ। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये जिम्मेदारी हजरत हारून को मैंने खुद से नहीं दी, बल्कि अल्लाह पाक के हुक्म से दी है। हारून ने कहा, खुदा की कसम मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, जब तक आप मुझे इस बात का प्रूफ नहीं देंगे मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इसकी ये बात सुनकर हजरत मूसा ने बनी इसराइल के सरदारों को जमा किया और उनसे फरमाया कि अपनी लाठियां यानी स्टिक्स ले आओ। वो सब लाठियां ले आए तो हजरत मूसा ने उन सब लाठियों को अपने कमरे में जमा किया और रात भर बनी इसराइल के लोग उन लाठियों का पहरा देते रहे। अब जब सुबह हुई और कमरे में देखा गया तो हजरत हारून अलैहि सलाम की लाठी सरसब्ज हो गई थी, यानी उसमें पत्ते निकल आए थे। हजरत मूसा ने फरमाया, ए कारून, अब तो तू मानता है ना कि हजरत हारून की जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से है? कारून ने कहा, यह आपका जादू है। हजरत मूसा ने फिर भी इसके साथ बहुत अच्छी तरह पेश आए, लेकिन वो फिर भी आप अलैहिस्सलाम को हर वक्त तकलीफ देता था और उसकी दुश्मनी हजरत मूसा के साथ रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि कारून ने एक मकान बनाया जिसका दरवाजा सोने का था और उसकी दीवारों पर सोने के तख्ते लगाए हुए थे। बनी इसराइल के लोग सुबह शाम उसके पास आते, खाना खाते, बातें करते और ऐसे हंसाया करते थे, और इसकी ज़िंदगी इस तरह गुजर रही थी। फिर इसी दौरान ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ, तो कारून ने हज़रत मूसा के पास आया और आपने उससे ये डीलिंग की कि वो अपनी दौलत से 1000वां हिस्सा ज़कात में दे देगा। लेकिन जब घर जाकर उसने कैलकुलेशन की तो उसके माल का 1000वां हिस्सा भी बहुत ज़्यादा बन रहा था। ये देखकर उसका दिल बदल गया और ज़कात अदा करने की उसकी हिम्मत नहीं बनी। उसने बनी इसराइल के बहुत सारे लोगों को जमा करके कहा कि तुमने हज़रत मूसा की हर बात मानी है, और देखो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अब तुम्हारा माल भी लेना चाहते हैं, तो तुम लोग इस बारे में क्या कहते हो? यानी वो खुद ज़कात नहीं देना चाहता था, तो उसने दूसरे लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, वरगलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे बड़े हैं, जो आप चाहें हुक्म दीजिए, हम आपकी हर बात पर अमल करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। अब कारून ने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहि सलाम की दुश्मनी में एक नहायत ही घिरी हुई हरकत की। उसने अपने लोगों से कहा कि एक औरत के पास जाओ और उसे पैसे दो ताकि वो हज़रत मूसा पर बुरे काम की तोहमत लगाए, जब ऐसा होगा तो बनी इसराइल हज़रत मूसा को छोड़ देंगे। चुनाचे कारून ने उस औरत को बहुत सारा माल और बहुत से वादे करके ये तोहमत लगाने पर तैयार कर लिया। फिर वो दूसरे दिन बनी इसराइल के लोगों को जमा करके हज़रत मूसा के पास आया और कहने लगा, बनी इसराइल आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपका बयान सुनना चाहते हैं, आप आएँ और इन्हें बयान सुनाएं। हज़रत मूसा तशरीफ़ लाए और बनी इसराइल में खड़े होकर फरमाया, ऐ बनी इसराइल, जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, जो बहतान लगाएगा उसे 80 कोड़े लगाए जाएंगे। ये सुनकर कारून कहने लगा, ये हुक्म सबके लिए है या सिर्फ हमारे लिए? हज़रत मूसा ने फरमाया, सबके लिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। जब आपने ये फरमाया तो कारून ने अपनी चाल चली, उसने कहा कि बनी इसराइल के इन लोगों का ख्याल है कि आपने फलां औरत के साथ गुनाह किया है, माज़ल्ला। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे बुलाओ। जब वो औरत सामने आई तो आपने उससे फरमाया, ऐ औरत, तुझे उस जात की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया फाड़ कर उसमें से रास्ते बनाए और तौरात नाजिल की, तो बिल्कुल सच सच बता कि असल बात क्या है। हज़रत मूसा के इन जुमलों ने उस औरत के दिल में अल्लाह का खौफ बिठा दिया। नाजरीन, वो बिल्कुल डर गई और उसे अल्लाह पाक के रसूल पर बहतान लगाने की जुर्रत ना हुई। उसने हज़रत मूसा से अर्ज की कि जो कुछ कारून कह रहा है अल्लाह पाक की कसम ये सब झूठ है, और इसने इल्ज़ाम लगाने के लिए मुझे बहुत सारा माल भी दिया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। आप अलैहिस्सलाम उसी वक्त फ़ौरन सजदे में चले गए और आपने उसी हालत में कारून के लिए बददुआ फरमाई। नाजरीन, ये कारून के लिए कितनी बड़ी बदबख्ती थी, अगर कोई आम सा मजलूम होना टूटे दिल के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में जालिम के लिए बददुआ करता है तो साथ वो आसमान को चीरते हुए जाती है वो बददुआ। अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत मूसा की दुआ का क्या असर होगा जो अल्लाह के नबी हैं, और फिर आपने वो रोते हुए दुआ मांगी थी। कारून ने आपका बहुत दिल दुखाया था, इसने आपके साथ बहुत बुरा किया था, मासूम नबी पर इल्ज़ाम, वो भी इतना बड़ा और गंदा इल्ज़ाम। अल्लाह पाक ने फौरन आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और आपको वही फरमाई कि मैंने ज़मीन को आपकी फरमा बरदारी करने का हुक्म दिया है, आप ज़मीन को जो चाहें हुक्म दें। हज़रत मूसा ने बनी इसराइल से फरमाया, बनी इसराइल, अल्लाह पाक ने मुझे कारून की तरफ भी इसी तरह रसूल बनाकर भेजा है जैसे फिरौन की तरफ भेजा था। जो कारून का साथी है वो इसके साथ इसकी जगह ठहरा रहे, और जो मेरा साथी है वो इससे अलग हो जाए और मेरे साथ आ जाए। ये सुनकर सब लोग कारून से अलग हो गए और 2 लोगों के अलावा कोई भी कारून के साथ ना रहा। फिर हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि इन्हें पकड़ ले। आपकी ज़बान से ये अल्फाज निकलते ही ज़मीन में हरकत पैदा हुई और वो लोग घुटनों तक ज़मीन के अंदर धंस गए। फिर आपने दोबारा ज़मीन को यही हुक्म दिया तो वो लोग कमर तक ज़मीन में चले गए। आप यही फरमाते रहे यहाँ तक कि वो लोग गर्दनों तक धंस गए। जब इतना ज़मीन में धंस गए तो अब इनको अकल आई और वो माफ़ी मांगने लगे, और कारून तो आपको अल्लाह पाक की कस्में और रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था, आपने इसकी एक बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि वो लोग पूरे के पूरे ज़मीन में धंस गए। हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो लोग कयामत तक ज़मीन के अंदर धंसते ही चले जाएंगे। यह अल्लाह का अजाब है जो इन्हें इनकी दुश्मनी की वजह से मिलता रहा।